ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, आज से लागू नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त मोहन सिंह डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
नमस्कार श्रोताओं, आज देश में तीन नए कानून लागू हो चुके हैं और इन तीनों कानूनों से जुड़े मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मोहन सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
मोहन सिंह जी। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है कि पुराने कानूनों को हटाना जरूरी क्यों समझा गया और हमें इन नए आपराधिक कानूनों की आवश्यकता क्यों हुई है?
पुराने कानून थे वो इंग्लिश टाइम के कानून थे, जो आईपीसी था वो 1860 का था, यानी कि उसको 150 साल से भी ज्यादा ऊपर हो गए। और इसी तरह से जो एविडेंस एक्ट था वो 1872 का था, 150 साल से ऊपर हो गए। और सीआरपीसी सिर्फ जो है वो 1973 की थी, उसको भी 50 साल से ऊपर हो गए थे। उस वक्त ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, नई सदी में जो टेक्नोलॉजी का हुआ है बहुत सारा काम ज्यादातर टेक्नोलॉजी से हो रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से और समय की जरूरत के हिसाब से ये कानून बदलने पड़े, क्योंकि पुराने कानूनों में ज्यादातर शब्द थे वो ब्रिटिश इंडिया इस टाइप के नाम थे, खासकर एविडेंस एक्ट में तो सब जगह ब्रिटिश इंडिया, क्राउन प्रिंस और एक दो स्टेट के नाम एक्स्ट्रा जो शुरू किया गया था वो नाम थे, इसलिए इनको हटाना जरूरी था। और टाइम के हिसाब से भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का सिस्टम चालू हुआ है, सोशल मीडिया जब से डेवलप हुआ है तो दुनिया नजदीक हो गई है काफी, और इस वजह से सबको यूज करने के लिए और टाइम के हिसाब से वो 150 साल पुरानी बातें नहीं रही हैं, इसलिए ये कानून बनाने जरूरी थे।
मोहन सिंह जी, हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में इन तीनों नए कानूनों के बारे में आप जानकारी दें।
इन तीनों कानूनों के बारे में सबसे पहले जो था आईपीसी था, भारतीय दंड संहिता थी, उसको नाम बदलकर अब कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, जो 2023 में एक्ट हमारा लागू हुआ है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसका नाम अब रख दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका नाम बदल दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये इनके नाम चेंज किए हैं और अंदर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वक्त के हिसाब से जो जरूरत थी वैसा ही बदलाव किया गया है, फास्ट ट्रायल के लिए लोगों को जल्दी न्याय मिले और जिनके खिलाफ केस हैं उनको भी ज्यादा पेंडिंग ना रहे और जो रिपोर्ट लिखाते हैं उनको भी जल्दी जल्दी न्याय मिले और उनको कोई दूसरे बेनिफिट भी, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिले।
मोहन सिंह जी, एक बहुत जरूरी मुद्दा होता है हर कानून के बारे में, हर चीज के बारे में, कि एफआईआर और अरेस्ट किसे किया जाएगा या फिर इसके जो प्रावधान होंगे। पुराने कानूनों की अगर हम बात करें और नए कानूनों की बात करें तो नए कानूनों में किस तरह से इन्हें शामिल किया गया, अब क्या चेंजेस लाए गए हैं और किस तरह से ये इन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे?
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर। एफआईआर पहला डॉक्यूमेंट है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का जिससे कि कानून की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और उसको जो प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको एफआईआर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो ये समझा जाता है कि जो आदमी शुरू में जो रिपोर्ट लिखाएगा वो अनप्लान्ड होगी और वो जो बात कहेगा वो तकरीबन सच होगी, इसलिए उस बात के ऊपर ज्यादा लगाया जाता है। एफआईआर को दोबारा नहीं लिखा जाता, एक बार लिखा जाता। अब जो अब से पहले क्या था, एफआईआर के लिए लोगों को जैसे कोई पंजाब से ट्रक लेकर चला और दिल्ली आ गया, बीच में उसके कई सामान चोरी हो गया, तो एफआईआर के लिए घूमता रहता था, दिल्ली आता था, दिल्ली वाले कहते हमें क्या पता भाई तू जहां पे हुआ है वहां पे जा, वापस पंजाब जाता, कहीं शिमला जाता, सब कहते हैं हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं है। दिल्ली में ही समझ लो कोई पिक पॉकेटिंग हो जाती थी तो ये नहीं पता लगता था उसको भी कहां हुई मेरी पिक पॉकेटिंग, वो कहीं जाकर देखता है। तो इस तरह से बहुत परेशानी थी लोगों को। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी होते थे जिसके लिए एफआईआर करना जरूरी होता था, मामूली मामूली चीजों के लिए पहले जरूरी था, जैसे भी बिजली का मीटर, पानी का मीटर चोरी हो जाते थे तो लोगों को धक्के खाने पड़ते थे कि भाई एफआईआर कराएंगे तब जाके हमें नया मीटर मिलेगा। छोटी छोटी चीजें के लिए भी एफआईआर करानी पड़ती थी क्योंकि उस टाइम कोई कम्युनिकेशन सिस्टम था नहीं, और अब तो जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है और दूसरे सोशल मीडिया हैं आप, इसलिए अब नए कानून में जो एफआईआर की कंडीशन थी वो इसमें अब इंसिडेंट कहीं के भी हो आप कहीं पे भी अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं। हमारे बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173 है जिसके अंदर पहले ये 154 था आईपीसी में, और अब इसमें एक नई चीज डाल दी है इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ऑफेंस, कहीं पे भी हो इंसिडेंट कहीं हो पर आप जहां जाएंगे वहां दिखा सकते हैं, और बाई ओरली या तो फिजिकली जाके प्रेजेंट हो गए या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी एफआईआर लिखवा देते हैं। ओरली आपने लिखवाई तो आपकी बात सुनेंगे, ड्यूटी सिरो बोलेगा, आपकी बात सुनकर आपकी एफआईआर लग जाएगा और ये आपने लिखित में पकड़ा दी कम्प्लेट दे दी तो उसको उतार देंगे एज ए एफआईआर और उसके ऊपर आपके साइन होंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हो। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भेजी है, अब नए प्रावधान में ये है, अगर आपने किसी एसएचओ को, सबके पास नेट से गूगल से भी आप किसी का एसएचओ का नंबर, किसी एसएचओ की ईमेल, किसी डीसीपी की ईमेल, ये सब आप आम आदमी भी, सभी लोग आजकल स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, सबको मिल जाता है, तो वो उसके माध्यम से भी अपनी कम्प्लेंट जो भी उसके साथ हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, जो क्राइम हुआ है, तो वो उसकी सूचना उसके थ्रू उसको भेज सकता है। ऐसी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आएगी उसके लिए ये कर दिया जरूरी है कि आप आके 3 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर आके साइन करोगे, आपकी बात तब तक रखी जाएगी और उसकी एंट्री की जाएगी। 3 दिन में आपको आपके उसके ऊपर साइन करना पड़ेगा। ये पहले नहीं थी, नई चीज इसमें की है। और इसके अलावा ये भी है कि तो आपकी बात नहीं मानी तो आप एक डीसीपी को एक रिटर्न कम्प्लेंट दे सकते हैं। अगर आपकी इंग्रेडिएंट्स जो आपकी कम्प्लेंट से बनती है, एफआईआर बनती है, कोई ऑफेंस बनता है, ऑफेंस का मतलब जो ऑफेंस कोग्निजेबल, कोग्निजेबल का मतलब है जिनमें अरेस्ट की जाती है, वो अपराध जिनमें पुलिस बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकती है और जिसकी एफआईआर की जाएगी। इसके अलावा अगर लगता है उसको कि भाई ये इसकी बात सही नहीं हो सकती तो वो उसमें 2 हफ्ते के लिए उसकी इंक्वायरी के लिए पेंडिंग रखते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंक्वायरी पूरी करनी पड़ेगी और ऑफेंस बनता है तो उसकी एफआईआर करेंगे, नहीं तो उसको बता देंगे भाई हम नहीं कर सकते। तो वो आदमी आगे डीसीपी के पास जाएगा, डीसीपी साहब उसकी बात सुनेंगे, उनको लगता है कि ऑफेंस बनता है तो वो ऑर्डर कर देंगे या खुद भी कर सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर वो आदमी उसकी वो नहीं मिलती है तो वो कोर्ट में जा सकता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो नई चीज ऐड की है उसमें पहले कॉपी जाती थी कम्प्लेनेंट को, मतलब अब उसमें वर्ड ऐड कर दिया गया विक्टिम, विक्टिम जो कोई हो उसको भी उसकी एफआईआर कॉपी मिलेगी। और जो अपराध कोई औरत के खिलाफ है, फीमेल के खिलाफ है, तो उसकी इंक्वायरी जो है वो फीमेल अफसर से ही कराई जाएगी। और अगर कोई कम्प्लेनेंट है वो किसी वजह से मेंटली और फिजिकली डिसेबल हो गया है, वो थाने नहीं जा सकता, तो उसके घर पे जाके या जहां उसको कन्वीनियंट लगे वहां जाके उसकी बात लिखी जाएगी। और इसके लिए इंटरप्रेटर की हेल्प ली जा सकती है, किसी स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ली जा सकती है और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पहले वीडियोग्राफी नहीं होती थी, वीडियो क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन के विस्तार की वजह से वीडियोग्राफी जरूरी होगी है। लेकिन अगर कोई ऐसी कम्प्लेंट देता है जिसमें सजा 3 से 7 साल तक की हो और लगता है कुछ डाउट है उसमें, तो उसकी ये नया वर्ड ऐड कर दिया इसमें, आपकी बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं 14 दिन के अंदर अंदर। 14 दिन में आपको लगता है कि इसमें ऑफेंस नहीं बनता तो बता दो भी हम इसकी एफआईआर नहीं कर रहे हैं, या उसकी एफआईआर कर देंगे। और 14 दिन के बाद भी उसको बोलते हैं अभी हम आपकी जो कम्प्लेंट है उसमें ऑफेंस नहीं बनता है इसलिए आप जो है उसको बताएंगे, तो वो उससे सेटिस्फाइड होता तो अपने उस एरिया के एसपी से मिलेगा, डीसीपी से मिलेगा, उनको रिटर्न कम्प्लेंट भेज सकता है और वो सेटिस्फाई है तो वो उसकी एफआईआर करा देंगे। और वो भी नहीं मानते उनकी बात तब वो आदमी कोर्ट जा सकता है।
दबास जी, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 3 नए कानून हमारे सामने आज हैं, इनका समाज और देश के हित में क्या महत्व होगा?
सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट, ये इस पर्पज के लिए ये तीनों चीज बनाई गई हैं कि पहले नागरिकता को वेट ना करना पड़े, उनको धक्के नहीं खाने पड़े कहीं अपनी कम्प्लेंट लिखाने के लिए भी, जब वो लिखाएं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार जो है सबका अच्छा उनके साथ, और उनको फास्ट जस्टिस भी फास्ट मिले, जल्दी से उनकी जो एफआईआर कराई है, नहीं कि जैसे पहले था हिंदी फिल्मों में डायलॉग भी है ना कि तारीख पे तारीख वाला सिस्टम अब खत्म कर दिया है, हर एक चीज के टाइम बार कर दिया है कि 90 दिन के अंदर से ज्यादा, अगर सारी बातें आपको बताऊंगा मैं क्या क्या उसमें नए वो किया है, इस वजह से जो है ये इसलिए सिटीजन फ्रेंडली और विक्टिम फ्रेंडली भी है ये, और इवन ये समटाइम उसके लिए जो अक्यूज्ड है उसके लिए भी इतना हार्श नहीं है, उसको भी अगर वो महसूस करता है अपनी गलती मानता है तो उसको प्ली बार्गेनिंग का एक वो दिया गया है वो मौका, पहले प्ली बार्गेनिंग थी उसकी टाइम लिमिट नहीं थी, अब कर दिया है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो रेडी होता है अपनी प्ली बार्गेनिंग करता है भी गलती होगी मुझे मैं कम्पनसेट कर दूंगा ये कर दूंगा, तो जैसे चोरी के मामले में उसका सामान दे दूंगा, मतलब उसके चीज को लंबा खींचने की बजाय तुरंत उनका निपटारा हो जाएगा।
वैसे इन कानूनों के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग कितना आवश्यक है और आगे की राह किस तरह से तय करेंगे हम?
इन कानूनों के अच्छी तरह से पालन करने के लिए हरेक स्टेज पर हरेक डिपार्टमेंट को, हरेक एजेंसी को एक समन्वय में बैठाना पड़ेगा और टेक्निकल सपोर्ट सबकी जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इससे कुछ फायदे भी हुए हैं और लेकिन सब इसको शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट होने में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सबका लिंक एक दूसरे से होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गवाह, मैं किसी केस का आईओ हूं और कोई गवाह कलकत्ता में बैठा हुआ है, पहले मुझे जाना पड़ता था कलकत्ता या मैं उसको कलकत्ता से दिल्ली बुलाता था, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए उसकी वीडियोग्राफी हो जाएगी और उसकी रिटर्न अलग बन जाएगी, तो वो उस आदमी को और उसकी गवाही भी वो वहीं से दे सकता है। जब कोर्ट में जब ट्रायल आएगा तो उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा बचेगा, गवर्नमेंट को भी जो उसको खर्चा देना पड़ता है वो भी बचेगा। इस टेक्नोलॉजी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जैसे कोर्टों के सिस्टम भी चेंज हुए हैं, कोर्ट्स के नाम भी बदल दिए गए हैं इसमें, जैसे पहले था दिल्ली में जैसे था मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट था, अब उसको पूरे इंडिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, सबके नाम मतलब पूरे इंडिया में एक जैसे नाम होंगे। जैसे पहले मेट्रोपोलिटन सिटी में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट थे, दूसरे जो स्टेट में जो है वो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते थे, तो अब सबको एक कर दिया गया है। और तारीख पता लिखना पड़ने की मैक्सिमम दो बार आप एडजर्नमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर आपका गवाह नहीं आता तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अगर जज साहब छुट्टी पे हैं तो दूसरे जज साहब आपकी ड्यूटी लगेगी, होगी लिंक मजिस्ट्रेट की, कि उस दिन आपका काम वो देखेंगे। सरकारी वकील छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह दूसरा आदमी की ड्यूटी लगेगी, ये नहीं है कि उसकी वजह से डेट पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा।
मोहन सिंह जी, हमने देखा है कि कुछ लोग अक्सर सड़क जाम या फिर रेल रोको आंदोलन या फिर सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, या यूं कहें कि इस तरह के जो भी कार्य करते हैं उनसे निपटने के लिए ये नए कानून किस तरह से सहायक होंगे?
बहुत छोटा सा फार्मूला दे दिया है सीआरपीसी में, इसमें नए बीएनएसएस में, जो क्रिमिनल नहीं है पर जो एजिटेशन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।
जी जी,
मतलब बगैर परमिशन के जो धरने पर बैठ जाते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, और उनके लिए एक नया सेक्शन इसमें ऐड कर दिया। वो जो सेक्शन था, जो वो दफा थी, वो पहले दिल्ली पुलिस एक्ट में थी, दिल्ली पुलिस एक्ट की उस सेक्शन को उठा गया, अब इसमें सीआरपीसी में, अब ये जो बीएनएसएस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें डाल दिया गया है। वो छोटा कानून है, मतलब उसमें बहुत हार्श नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव है, वो कानून उसमें अब नया सेक्शन लगा दिया है, 172 सेक्शन लगा दिया। पहले वो दिल्ली पुलिस में, वो कानून पहले दिल्ली पुलिस एक्ट में शामिल था, पर उसको माना जाता है पेटी ऑफेंस में। उसमें ऐसे आदमियों को कोई भी आईओ अगर उसकी बात को नहीं मानता, उसमें वर्ड यूज किया उन्होंने कन्फॉर्म, कन्फॉर्म का मतलब जो डिसओबीडियंस करता है, जो बात को नहीं मानता है, उसको पुलिस अफसर डिटेन कर सकता है, उसको हटा सकता है, अगर वो रजिस्ट करता है, रिफ्यूज करता है, इग्नोर करता है, डिसरिगार्ड करता है लॉफुल डायरेक्शन को, मतलब उसकी अंडर 24 घंटे तक वो थाने में ऐसे आदमियों को बैठा सकते हैं, एफआईआर करने की जरूरत भी नहीं है, उनको कानूनी मतलब एक छोटा सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया है ताकि उसको ज्यादा परेशानी भी ना हो और उनके खिलाफ, क्योंकि आमतौर पर एजिटेशन वाले ऐसे ही किसी बहकावे में आ जाते हैं, क्रिमिनल तो होते नहीं है वो।
मोहन सिंह जी, एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आतंकवाद और अलगाववाद देश के सामने बड़ी चुनौती है, तो इस तरह के अपराध को रोकने के लिए भी और प्रावधान किए गए नए कानूनों में?
नए कानूनों में पहले टाडा एक्ट था, बहुत साल पहले वो हट गया था कुछ टाइम के लिए, और ये था यूपीए एक्ट था, ये दोनों एक्ट को अब आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दिया गया है और उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है।
साइबर अपराधों से निपटने के लिए अब क्या प्रावधान है नए कानूनों में?
साइबर अपराध के लिए पहले ही एक कानून आ चुका है, आईटी एक्ट, अभी 2000 के बाद ही आया है, जब से कुछ ऐसे ऑफेंस शुरू हो गए थे, उसकी दफात लगेंगी साथ में, भारतीय आईपीसी वाला जो नया सेक्शन है वो भी इसमें लगेगा, और उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए बीपीआरडी है हमारा, ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी फोरेंसिक जैसे इंग्लिश ऑफेंस होंगे उनमें फोरेंसिक की टीम जरूर जाएगी, ये कंपलसरी कर दिया, दैट हैज बीन मेड लीगल, उसको मतलब कंपलसरी कर दिया है, जो 7 साल से ऊपर सजा वाले केसेज हैं उनमें घटनास्थल के ऊपर फोरेंसिक लेबोरेटरी वाले आदमी जो स्टाफ जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जरूर जाएंगे, और उनके पास भी साइबर के भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किया गया है, वो सारी जो भी आईओ कोई रिपोर्ट मांगे वो बताएगी कहां से हुआ था शुरू, ताकि मतलब वो मेन एक्यूरी तक पहुंच सके।
मोहन सिंह जी, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे आज से लागू नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त मोहन सिंह डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।